नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विमान सेवा देने वाली कंपनी गोफर्स्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौशिक खोना ने बुधवार को कहा कि NCLT का एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही याचिका स्वीकार करने का निर्णय ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि कंपनी को पटरी पर लाने के लिए समय पर आया प्रभावी निर्णय है। NCLT ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया। खोना ने PTI भाषा से फोन पर कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, साथ ही व्यावहारिक कारोबार को अव्यावहारिक होने से पहले उसे पटरी पर लाने का उपयुक्त उदाहरण भी। उन्होंने कहा कि आदेश समय पर आया और प्रभावी है। नकदी संकट से जूझ रही गोफर्स्ट ने 2 मई को ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने को लेकर स्वैच्छिक रूप से याचिका दायर की थी। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 265 रुपए के नुकसान के साथ 61,585 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 120 रुपए की तेजी के साथ 77,800 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, दिल्ली सराफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत 265 रुपए की गिरावट के साथ 61,585 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2,033 प्रति ऑन्स रह गया, जबकि चांदी तेजी के साथ $25.88 प्रति ऑन्स हो गई। बुधवार को एशियाई कारोबारी घंटों में सोने की कीमतों में गिरावट रही। कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होने से अप्रैल के महीने में संगठित क्षेत्र में ऑनलाइन भर्तियों की संख्या में एक साल पहले की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। एक रिपोर्ट में ये आंकलन पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद अप्रैल में नवाचार आधारित स्टार्टअप फर्मों में भर्तियों में खासी तेजी देखी गई। फाउंडेड इनसाइट्स ट्रैकर पर आधारित रिपोर्ट कहती है कि एक साल पहले की तुलना में अप्रैल 2023 में संगठित क्षेत्र में ऑनलाइन भर्तियों की संख्या 6% गिर गई, लेकिन नए एवं उभरते क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अधिक आवेदन मांगे गए। फाउंडेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शेखर गरीसा ने कहा, मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने कारोबार के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया है और इसकी वजह से उन्हें तेजी से बदलते माहौल के अनुरूप खुद को ढालना पड़ रहा है। भले ही ऑनलाइन भर्तियों में कमी आई है, लेकिन युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में रोजगार के तमाम मौके उपलब्ध हैं। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के बारे में निर्णय करेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पिछले साल तीनों बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कारोबार के बजाय मुनाफे पर ध्यान देने को कहा था और बेहतर मूल्यांकन के साथ केवल अच्छे प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय आंकड़ों से लाभ की स्थिति और सॉल्वेंसी मार्जिन यानी अनुमानित देनदारी के बाद की बची पूंजी पर शुरू किए गए पुनर्गठन के प्रभाव का पता चलेगा। अमेरिकी नेटवर्क उपकरण विनिर्माता सिस्को के चेयरमैन एवं CEO चक रॉबिन्स ने भारतीय बाजार और इसकी संभावनाओं को लेकर आशावादी नजरिया रखते हुए कहा कि कंपनी की तमिलनाडु में विनिर्माण संयंत्र लगाने की योजना है। भारत के एक सप्ताह के दौरे पर आए रॉबिन्स ने यहां PTI भाषा के साथ खास बातचीत में कहा कि भारत में मौजूद ऊर्जा अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा, भारत ने डिजिटलीकरण की दिशा में बेशुमार प्रगति की है। भारत की महत्वाकांक्षा पूरी तरह स्पष्ट है और इस समय मुझे यहां पर अविश्वसनीय माहौल महसूस हो रहा है। सिस्को ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय बाजार में कुल मिलाकर $1 अरब के निर्यात और घरेलू उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार स्मार्टफोन के उपयोग में नहीं रहते हुए उसका इस्तेमाल करने वालों के माइक्रोफोन तक सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप की पहुंच होने के दावे की जांच करेगी। मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि भले ही नया डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा हो, सरकार निजी सूचना की गोपनीयता के कथित उल्लंघन की जांच करेगी। ये दावा किया गया कि एक उपयोगकर्ता के माइक्रोफोन में ऐसे समय में व्हाट्सएप की पहुंच हुई जब वह उपयोगकर्ता सो रहा था। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के बारे में निर्णय करेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पिछले साल तीनों बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कारोबार के बजाय मुनाफे पर ध्यान देने को कहा था और बेहतर मूल्यांकन के साथ केवल अच्छे प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय आंकड़ों से लाभ की स्थिति और सॉल्वेंसी मार्जिन यानी अनुमानित देनदारी के बाद की बची पूंजी पर शुरू किए गए पुनर्गठन के प्रभाव का पता चलेगा। सरकार ने पिछले साल तीनों साधारण बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई थी। कोलकाता स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सबसे अधिक 3,700 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,200 करोड़ रुपए और चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपए मिले। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।